ओम शांति। व्यर्थ से मुक्त रहने वाले ही एकाग्रचित्त हो सकते हैं, लेकिन सभी को अपने से पूछना है, दिल की गहराई से, जरा ऊपर ऊपर से नहीं, क्या मैं व्यर्थ से मुक्त रहना चाहता हूं? या बाबा कहते हैं तो हम भी कह देते हैं, पूछेंगे सभी अपने से। क्योंकि जो व्यर्थ से मुक्त रहने के इच्छुक होंगे वो व्यर्थ सुनेंगे नहीं, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये अनुभव मेरा बिल्कुल शुरू का 69, जब मुझे योगी बनने का बहुत ज्यादा लगन उमंग था, तो मैं देखता था जरा भी पर चिंतन हुआ एकाग्रता खत्म, तुरंत निर्णय कर लिया इम्पोर्टेंट है योग में एकाग्रता, पर चिंतन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? इम्पोर्टेंस में अगर देखा जाए तो 0% भी नहीं लगेगा उसको, छोड़ना है। छूटने लगा, लक्ष्य मिलता है मन को तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो क्या हम सचमुच व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हैं? अब मैं कई युवकों से पूछा करता हूं, बहुत आते हैं समस्याएं लेकर कि मन बहुत भटक रहा है, कहीं भी चित्त चैन नहीं पा रहा है। आजकल बहुत युवकों का ये हाल है। मैं पूछता हूं, कितना रहते हो नेट पे, फेसबुक, सवेरे उठते ही आज के स्टेटस पे ये डालना है, मुझे तो पता भी नहीं स्टेटस पे है क्या, बोला कहा बस इसी में लगे रहते हैं। मैं तो उनसे पूछा करता हूँ ये स्टेटस है क्या, तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलता है, तो मैं उन्हें समझाता हूँ इसी से तो मन भटक रहा है। जो युवक यहां बैठे हैं समझ लें अच्छी तरह, टू मैनी इन्फॉर्मेशंस, क्या करेंगे, कॉज कंफ्यूजन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूजन पैदा होगा दिमाग में और वो भटकेगा, ये या ये, ये या ये, चाहे वो उनके काम की बात हो या ना हो, भटकेगा। तो मैं उनसे पूछता हूं, अगर पढ़ाई में एकाग्रता चाहते हो तो फिर ये छोड़ दो ना, का छूटता नहीं है, व्यसन बन गया है आजकल ये सबसे बड़ा, जैसे शराब, अफीम, नशे, सिगरेट, बीड़ी, व्यसन है, ये भी व्यसन हो गया। तो सभी अपने से पूछेंगे, यदि मुझे व्यर्थ से मुक्त होने की श्रेष्ठ इच्छा है तो क्या हम इन चीजों के त्याग करने के लिए तैयार हैं? एकाग्रता बहुत बड़ी चीज, उसके लिए जो कुछ हमें करना पड़े कर लेना चाहिए। क्यों? एकाग्रचित्त आत्मा बाबा के साथ का सहज अनुभव करेगी। 5 मिनट भी बैठ गए ना बाबा के पास एकाग्रचित्त होकर, वो परम सुख सारा दिन चलेगा। इसको बाबा बीज रूप स्थिति कहते हैं। उसके स्वरूप पर बुद्धि 5 मिनट भी स्थिर हो गई तो लगेगा बहुत बड़ी ताकत आ गई आत्मा में। पढ़ाई में एकाग्रता हो गई तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जो आजकल कोचिंग क्लास खुलते जा रहे हैं, कोई बुरा ना मानना जिसने खोला हो, ट्यूशन, कोचिंग क्लास, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, इसकी जरूरत नहीं है अगर बुद्धि एकाग्र हो जाए। अब कोचिंग में तैयारी कराते हैं उनको, बहुत पढ़ के आते हैं, आके व्हाट्सएप पे लगे हुए 1 घंटा सब खत्म, डिलीट। तो एकाग्रता सबसे बड़ी शक्ति। मुरली भी सुनते हैं, एकाग्रचित्त होंगे तो छप जाएगी, जैसे आज की मुरली में था ना, धारण हो जाएगी, देर नहीं लगेगी, एक बार पढ़ेंगे लौकिक पढ़ाई भी साथ साथ याद हो जाएगी। और जो निगेटिव बहुत हैं, उन्हें पहले ही अभ्यास करना चाहिए हर निगेटिव को पॉजिटिविटी में बदलने का, क्योंकि ये भी एक बड़ी महामारी फैलती जा रही है संसार में, बहुत निगेटिव बहुत लोग हैं। आप ही बताते हैं, मैं बहुत निगेटिव हूं क्या करूं, पता होते भी कि मैं निगेटिव हूं, यह एहसास होते भी कि निगेटिविटी से जीवन में नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं, फिर भी मनुष्य बहुत निगेटिव है। बीमारियां ऐसी बढ़ रही हैं, अगर मनुष्य निगेटिव हो जाता है, अभी का उदाहरण दे दूं, कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए तो समझ लो होगा ही, रोज सोच लेते हैं 5-7 बार कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए। टीवी पे बहुत दिखता था, मुंबई वालों को तो सबसे खतरनाक मुंबई दिल्ली में रहा, डॉक्टर भी भूत जैसे दिखाई देते थे पेशेंट को सब कुछ, और अगर एक दो डेड बॉडी निकल गई तो बस का हम भी गए, तो वह आह्वान हो जाता है। मुझे बताते थे ना जो लोग ठीक होके आए, इतना भय था हॉस्पिटल में, बात मत पूछो, थे तो सब जिंदे, मान लो 500 या 200 या 300 जैसा हॉस्पिटल, इतने बेड उतने पेशेंट हैं, लेकिन डेड साइलेंस छाई रहती थी, डेड जो मृत्यु के बाद साइलेंस होती है। तो ये डर निगेटिविटी, इससे सभी बचेंगे। मैं एक बात जो सुनाता आ रहा हूं बहुत समय से और सबको सुनानी है, और मुझे संकल्प है कि आप सब भी सुनाएं और करोड़ों लोग इस सत्य से परिचित हो जाएं, उन्हें पहचान हो जाए। और वो ये है कि हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। मैं बहुत सुना रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं होता मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, लोग कहेंगे बार बार वही सुनाते हैं। हर रोज सुनना चाहिए, दिन में भी 4-5 बार सुनना चाहिए, कहीं ऐसा लिख के रख देना, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, पैदा होती है। निगेटिव संकल्पों से निगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, प्योर संकल्पों से प्योर एनर्जी, पावरफुल संकल्पों से पावरफुल एनर्जी। क्या कैसी एनर्जी हमें चाहिए? और क्या होता है, बात तो मेडिकल की है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है मेडिकल का, मैं तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं देखा अब तक, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया है कि जो व्यक्ति बहुत निगेटिव या व्यर्थ सोचता है, उससे जो निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जाती है, उससे ब्रेन की कई चीजें डैमेज होती हैं, नष्ट होती हैं, जिनको रिपेयर करना सहज काम नहीं है। उन्हें केवल पावरफुल संकल्पों की एनर्जी ही ठीक कर सकती है, कोई दवाई नहीं। इसलिए ब्रेन वाइज हमें बहुत हेल्दी रहना है, सबसे ज्यादा तो मन ब्रेन हमारे स्वस्थ होने चाहिए, तो सभी बहुत ध्यान देंगे क्या सोचना है। हर सोच काम कर रहा है, कोई भी संकल्प हमारा बेकार नहीं जा रहा है, व्यर्थ संकल्प व्यर्थ की एनर्जी पैदा कर रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है संसार में। आने वाले समय में हम ये सब करेंगे, जो बाबा के बहुत अच्छे योगी बच्चे बन जाएंगे, संकल्पों के वाइब्रेशंस फैलाकर संसार को निर्भय बनाना। कोरोना का भय तो बहुत छोटा दिखाई देगा, अनेक घटनाएं भयभीत करने वाली होने जा रही हैं। हमें स्वयं भी निर्भय होना है और सबको निर्भय करना है, इसलिए बहुत अच्छे संकल्पों की रचना करेंगे। दूसरी बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, एकाग्रता के संबंध में 2-4 पावरफुल संकल्प, 2-4-5 हजारों व्यर्थ संकल्पों को नष्ट कर देंगे। अगर आपने थोड़ी देर भी अच्छे संकल्प कर लिए, अच्छे संकल्प ज्यादा नहीं होते कभी भी, वो 5-7 ही होते हैं, उससे जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत जबरदस्त होगी, व्यर्थ को खत्म करेगी। और जब मनुष्य को श्रेष्ठ संकल्प करने का आनंद आने लगेगा तो व्यर्थता पे ही छूटेगा। जैसे बहुत अच्छा भोजन आनंदकारी हो तो बाकी हल्की चीजें छूट जाएंगी ना। हम अच्छे संकल्पों का आनंद लें, मूल्यों में बहुत गहरी बातें आती हैं, उन पे ध्यान दें, उनको याद रखेंगे। चिंतन का और ज्यादा अर्थ कुछ न समझें आप, बाबा की सुंदर बातों को याद रखें। इसलिए मैं बहुत दिन से क्लासेज में एक बात और कह रहा हूं, आज आपके सामने भी है और सभी करेंगे ये होमवर्क, मुरलियों से 25 सुंदर बातें लिख लेनी है अपने लिए, जो आपके लिए संजीवनी बूटी हो, जो ऐसी पॉइंट हो कि मुर्दे में जान डाल दे, निराशा के अंधकार में बिल्कुल मुर्दे मुर्दे जैसे मनुष्य में जान डाल दे, बिल्कुल जो निराश हो गए हो, मरने जा रहे हो, उनको नया जीवन मिल जाए। ऐसी बातें साकार मूल्यों में और अव्यक्त मूल्यों में बहुत भरी पड़ी हैं। आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संडे की जो अव्यक्त मूल्य सुनते हैं उससे एक दो पॉइंट लिख लिया करो। साकार मूल्यों से जब भी कोई सुंदर नशे की बात मिले, खुशी की बात मिले, मन को हल्का करने की बात मिले, उसे नोट करो अलग। और नोट ऐसे नहीं करना होता जैसे आप लोग डायरियों में नोट कर रहे हैं, छोटी डायरी ले लेना जैसे आपके पास है ना, 4-6 इंच वाली मिलती है ना आजकल, तारों से बाइंडिंग, ऐसी ले लेना, बड़ी मिलती है 8 इंच वाली, बहुत अच्छी लगती है। एक पेज पे 2 पॉइंट लिख ली, थोड़े बड़े अक्षरों में, पढ़ भी सके, पढ़ते रहे उन्हें, वो बातें अपनी हो जाएंगी। जैसे बाबा ने कहा, मैंने बहुत समय तक ये बात अपने पास रखी थी, मेरी प्रिय बात रही, तुम मेरी याद में मग्न हो जाओ, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। बहुत प्रिय बात रही है मेरी बहुत साल तक। फिर जब बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देकर फकुर ले लो, बन जाओ बेफिकर बादशाह। ये बहुत सुंदर बातें हैं ना, बल देंगी आत्मा को, याद करते ही बल देंगी। ऐसी बात लिख लो जो आपको रोज याद दिलाए, कौन हमें साथ दे रहा है, कौन साथ दे रहा है, उसका साथ मिलने पर क्या क्या होता है। नशा चढ़ जाएगा, डर भी खत्म हो जाएगा। शेर आ गया आपके सामने, आएगा तो नहीं मुंबई में कभी, पर मान लो शेर आपके सामने आ गया, बाबा साथ दे रहा है ना, शेर को आप दिखाई नहीं देंगे, लोप। या आपके वाइब्रेशंस में आते ही उसकी हिंसक फीलिंग समाप्त, दोनों काम होंगे। तो ऐसी बातें सभी को रखनी है, ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। योग तो है हमारी ताकत, पर अस्त्र शस्त्र हैं हमारी ये ज्ञान की बातें। देखो मैं सोचा करता हूं सुदर्शन चक्र किस किस के हाथ में है, बोलो। नहीं हमारी बात नहीं कर रहे, भक्ति में शास्त्रों में श्री कृष्ण के हाथ में, विष्णु के, और बताओ बताओ, सारी देवियों के हाथ में भी सुदर्शन चक्र दिखाया है। आप अपने को तो भूल जाते हैं, श्री कृष्ण को देखते देखते अपने को भूल जाते, दुर्गा के एक हाथ में स्वदर्शन चक्र, मैं अभी गया था तो गंगा का चित्र बना हुआ था, गंगा के एक हाथ में भी स्वदर्शन चक्र, और किसके हाथ में नहीं है आपको पता है? आप कभी सोचते नहीं है? राम सीता के हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? मैं जब शास्त्रवादियों से बहस करता था तो ये अब तो नहीं बहस का जमाना रहा, तो मैं पूछा करता था, राम भी तो विष्णु का ही अवतार है, तो राम अवतार में राम स्वदर्शन चक्र कहाँ छोड़ाए, कहाँ छोड़ाए, क्यों नहीं है उनके हाथ में? हमारे लिए मोटी बात लेकिन अति गुह्य बात। जिन्होंने स्वदर्शन चक्रधारी बनने के अनुभूतियां बहुत की उनके हाथ में है, और जिन्होंने नहीं की उनके हाथ में नहीं है। स्वदर्शन चक्र बहुत गहरी अनुभूति, एक यात्रा है कि मैं आत्मा सतयुग से लेकर कैसे जन्म लेते लेते अब एंड में आ गई हूं, अपने पूरे चक्र में अपने जन्मों को देखना, ये सुदर्शन चक्र है। और बाबा ने बहुत गहरी बातें कही हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी बहुत बनेंगे अंत में उनको अनेक जन्मों का स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा, केवल रिपीट नहीं करेंगे मन में, दिखाई देने लगेगा, स्पष्ट दिखाई देने लगेगा हम ये थे। तो बहुत अच्छी तरह सभी स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो जो बाकी चक्र है ना छूट जाएंगे। आपके धंधों में भी जो चक्र चलते हैं ना गड़बड़ के, वो भी खत्म हो जाएंगे, सब सुंदर होगा। ये स्पिरिचुअलिटी, ये ज्ञान और योग के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हैं कि लौकिक कार्यों में भी संपूर्ण सहजता, संपूर्ण सफलता, निर्विघ्न स्थिति रहती है। एकाग्रचित होना है हमें। हमारी एकाग्रता कई तरह की है, टॉपिक तो गहरा है ही ये, पर सभी को संकल्प रखना है मुझे मन बुद्धि को स्थिर करना है। तो बाबा का महावाक्य है, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है। बुद्धि, मन और बुद्धि दो चीजें हैं ना, मन तो संकल्प शक्ति, संकल्प चलते हैं उनको रोकना एक अलग विधि है, लेकिन बुद्धि में है ज्ञान, ये विवेक है। बुद्धि है ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये नेत्र स्थिर हो जाए। बहुतों के ये दो नेत्र भी स्थिर नहीं होते, चंचल होते हैं। बुद्धि का नेत्र स्थिर हो जाए अच्छी साधना है। इसके लिए एक ही चीज जरूरी है, बस एक ही, बहुत ज्यादा नहीं। बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दें। सब जानते हैं एक उदाहरण, दुनिया में भी दिया जाता है, घड़ा फुल है तो छलकता नहीं है, और आधा है पानी बाहर गिरता रहेगा, थोड़ा भी चलेंगे ना पानी बाहर गिरेगा। बुद्धि अगर ज्ञान रत्नों से फुल है, ईश्वरीय नशे से फुल है, कई चीजें हैं बुद्धि को फुल करने की, सुंदर विचारों से फुल है तो छलकेगी नहीं, विचलित नहीं होगी, भटकेगी नहीं। करेंगे ये सब, होना है ना एकाग्रचित सबको, होना है। कुछ प्रैक्टिसेस ध्यान में रख लें, वो उन पर बहुत अच्छे अभ्यास करें। जिसको और सब चीजें मुश्किल लगती हो, 15 दिन के लिए आप एक प्लान ले लें। मैं आपको एक प्लान दे रहा हूं, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, दूसरे भी सब आत्माएं। आत्मा अपने को देखना, आत्मा दूसरों को देखना। आप एक दिन का अनुभव करके देखना, यहां कर लो अभी। कितना दिन हो गए भट्टी को? एक दिन और है ना? आज लास्ट कर लेना। कल जाना हो ट्रेन में, जैसे भी जाना हो, प्रैक्टिस करके देखो। फ्री होंगे ना? कई लोग फ्री अपने को अनुभव नहीं करते। ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हैं, फ्री हैं या बिजी हैं? कई लोग उसमें भी अपने को बहुत व्यस्त अनुभव करते हैं। हम फ्री हैं, और अच्छी चीजों के लिए फ्री नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे? एक दिन धुन लगा के देखो, 100 बार अभ्यास कर जाओ। मैं चमकती हुई मणि, 5 सेकंड अपने को देखो बस, और दूसरी भी आत्माएं 1-2 सेकंड, और देखो शाम तक क्या होता है। और अगर आप 15 दिन ये साधना कर लें अपने कार्यों में रहते हुए, मैं आत्मा ज्योति, कम से कम 5 सेकंड, 10 तक कर दें तो बहुत अच्छा। किरणें फैल रही हैं, और दूसरे भी अपने घर में ही, बच्चे, परिवार वाले जो भी हैं, ये आत्माएं हैं। पहले दिन आपको भूलेगा, दूसरा दिन थोड़ा और बढ़ेगा, तीसरा दिन और बढ़ेगा, 5 दिन में बहुत अच्छे अभ्यास हो जाएंगे, और योग फर्स्ट क्लास होगा, मन सुखमय स्थिति में रहने लगेगा। एक अभ्यास, अब प्लान आपको बनाना है अपने अपने दिनचर्या अनुसार। मनुष्य फ्री बहुत है, व्यर्थ ने उसको बिजी किया हुआ है। आपको जॉब पर जाना है अपने घर से, आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे में न जाने मनुष्य क्या क्या सोचता है, आगे का पीछे का। लेकिन अगर आप उसमें अभ्यास कर लो, मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूं, या और कोई अभ्यास, तो आपका वो आधा घंटा योग युक्त स्थिति में बीत जाएगा। दूसरी प्रैक्टिस एकाग्रता के लिए, स्वमान, स्वमान कोई रटने की चीज नहीं है। हम भी रटाते हैं लोगों से, लेकिन उनसे जिनके बस का कुछ नहीं होता, जिनको रटा भी नहीं जाता, 2 बार याद करेंगे फिर बुद्धि भटक जाएगी, 10 बार भी नहीं कर सकते एक साथ, उनको हम ये प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन आप कोई भी 5 स्वमान चुन लो जो आपको प्रिय हो, और सारा दिन मानो उनको रटना नहीं है, हर घंटे में 1 बार 5ों को याद कर लेना। याद करने के साथ स्वीकार करना, मैं इष्ट देवी हूं, बस हूं, ये कोई रटने की बात तो नहीं है। मैं इष्ट देवी हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, मैं विजयी रतन हूं, मास्टर सर शक्तिमान हूं, हूं पे स्ट्रेस डाल देना जरा, हूं, यही मैं हूं। देखना इसका इफेक्ट। 5 दिन इसका प्लान बना लो, 15 दिन उसका बना लो, 1 हफ्ता इसका बना लो, देखो क्या सुंदर एकाग्रता होती है। बस इतना ध्यान देना है कि व्यर्थ को बीच में आने न दें। इसका अर्थ है, वो तो आप ही आ जाता है, हमसे पूछ के थोड़ा ही आएगा। व्यर्थ में रुचि न हो, यह इंपॉर्टेंट चीज। बाबा के शब्दों में व्यर्थ से वैराग्य हो। आजकल और किसी चीज के वैराग्य की जरूरत नहीं, व्यर्थ से वैराग्य है या नहीं, इंपॉर्टेंट बात यह। व्यर्थ की सुनामी बढ़ती जा रही है क्योंकि चारों ओर विकारों का साम्राज्य, समस्याओं की कोई सीमा नहीं, बीमारियां बढ़ती जाती हैं, ये सब मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रही हैं। इसलिए व्यर्थ में रुचि नहीं, और बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेंगे, सुंदर संकल्प, पावरफुल संकल्प जितने होंगे उस वो वाइब्रेट होते हैं, ब्रेन में पहुंचेंगे, शरीर में फैलेंगे, बीमारियां जल्दी से जल्दी ठीक होंगी, आपके घरों की परिवारों की समस्याएं जल्दी से जल्दी ठीक होंगी, उनमें उलझने की जरूरत नहीं, समाधान ढूंढ लेना है, समाधान आपके पास ही है। हर एक की बुद्धि में बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी लेयर हमने जमा दी हैं, परत, उसको हटा दें, बुद्धि को अपनी थोड़ी डिवाइन करें, रिफाइन करें, व्यर्थ से मुक्त करें, तो बुद्धि में अथाह खजाने भरे हैं, अनंत खजाने मैं कहूंगा, थोड़े बहुत नहीं। जैसे ही रहना, सुखी रहना अपने हाथ में है या दूसरों के हाथ में, बोलो। बिल्कुल, ये सच्ची बात है, अपने हाथ में है। आपके पास भोजन आ गया है, अब देखो दो सिचुएशन, अच्छा भोजन है, कोई पहले से ही निगेटिव है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, अच्छा भोजन खा के भी उसको सुख नहीं मिलेगा, होगा या नहीं। टेंशन में भोजन खा रहे हैं, सिक्रेशन भी अच्छा नहीं होता ब्रेन से, स्लाइवा का। और एक व्यक्ति बहुत मौज में है, भोजन में आया है दाल और रोटी, दाल भी ठंडी है, रोटी भी ठंडी है, लेकिन है बड़े मौज में, क्या होगा? खा के बाबा को 10 बार शुक्रिया करेगा, वाह बाबा भोजन खिलाया, मजा आ गया आज तो, गरम खाने से तो मुंह जल जाता था मेरा, आज बड़ा मजा आया। होगा या नहीं, कि मनुष्य के अपने ऊपर है। सुखी रहना, दुखी रहना, परेशान रहना, चिंताओं में रहना, सब अपने ऊपर है। मैं एक चीज सिखा रहा हूं कुछ दिनों से, आपके सामने भी है वो बात, आप अपने जीवन को अनुभवों का भंडार बनाओ दो चीजों से। दो चीजें मैं आपको दे रहा हूं, सामने नोट कर लें। अपनी सब समस्याओं को, जिम्मेदारियों को बाबा पर अर्पित करके देखो वो क्या करता है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ, ये नहीं संशय भी बना रहे, फिर कहें बाबा ने तो कुछ किया नहीं हमारे लिए। समर्पित करो, ये समर्पण भाव बहुत बड़ी चीज है, भक्ति से चलता आ रहा है, 2500 साल चला है ये भी भक्ति में, ज्ञानियों ने, शास्त्रवादियों ने सबकी इसकी चर्चा की, सबने इसकी चर्चा की है, लेकिन करने वाले बहुत थोड़े रहे हैं। करके देखना, सब कुछ तेरा, सूक्ष्म बात है, मोटी नहीं है, पर मैंने अनुभवों के लिए आपको बात दी, चिंताएं भी उसको अर्पित, बोझ भी उसको अर्पित, परेशानियां भी उसको अर्पित, बीमारियां भी है ना उसको अर्पित करेंगे, इसका अर्थ उसको थोड़ा जाएंगी बीमारियां। तुम सुप्रीम सर्जन हो, अब ठीक करो मुझे, देखो क्या करता है, माताएं करती हैं कई भावना, भावना बहुत बड़ी चीज है। बच्चे की शादी है, पैसा नहीं है, कुछ करो बाबा, कर देता है। हालांकि शादियों में उसकी रुचि नहीं है आप जानते हैं बाबा तो कहते हैं, मैं तो कई शब्द बोलते थे बाबा साकार में, मैं नहीं बोलूंगा। वो बाबा तो पवित्र बनाने आता है ना, पर मदद सबको कर देता है। जो उसके द्वार पहुंच गया वो खाली नहीं आएगा। बात अपने संशय और निश्चय की है। दूसरी बात गहरी है, ऐसी गहरी, आपको आगे बढ़ना है। मान नाम और श्यान, इसकी इच्छा को पूरी तरह छोड़ें, नहीं तो यही भटकाती है मन को। कई लोग तो वही काम करते हैं जिससे उनका नाम हो जाए बहुत, कई लोग वो काम करते हैं जिनकी जिससे उनकी शान बढ़ जाए समाज में, मैं लौकिक की दृष्टि से भी कह रहा हूं। कोई लोग काम करने से पहले ही सोचते हैं इससे मुझे क्या मिलेगा, सेवाओं में भी सोचते हैं, मैं ये कर तो रहा हूं पर इससे मुझे फायदा क्या होगा, बाबा का काम होगा ये संकल्प नहीं है, मुझे क्या फायदा होगा, तो क्या नुकसान हो रहा है। संगम को एक वरदान है, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। नाम चाहिए नाम मिल रहा है, सम्मान चाहिए सम्मान मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये अच्छी तरह सोच लो। मान क्या चीज होती है, आज मान मिलेगा कल खत्म हो जाएगा। नाम होगा थोड़ी देर की खुशी होगी, हाँ भाई टीवी पे आ गए, अखबार में नाम आ गया, खत्म हो जाएगा। क्या चाहिए मुझे, ठीक बोल रहे, बोलो। अविनाशी खुशी चाहिए और बोलो, अपने से पूछना है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या बनना है, बोलो, हाथ उठा के बोलो। अतीन्द्रिय सुख चाहिए, दृढ़ करो मुझे क्या चाहिए, दृढ़ करो। मुझे शक्तियां जमा करनी है या मुझे वरदान चाहिए बाबा से, या मुझे परम सुख का भंडार अपने को बनाना है, या मुझे ज्ञान के खजाने से योग की शक्तियों से स्वयं को संपन्न करना है, या मुझे इस कलयुग के अंधकार में संपूर्ण पावन बनना है। खुद चिंतन करके अपना लक्ष्य निर्धारित करो, मोटा नहीं, रियली मैं क्या चाहती हूं, मैं क्या चाहता हूं, उस अनुसार काम होगा तो बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। नाम चाहिए तो नाम मिलेगा, लेकिन क्योंकि हमने बाबा का नाम नहीं कराया, अपना कराया, तो बाबा की दृष्टि से हम वंचित रहेंगे। मान चाहिए मान मिलेगा, लेकिन हमें मान तो भगवान ने दिया है, हम ये भूल गए, तो मान हमारा जल्दी अभिमान में बदल जाएगा। नाम तो इस संसार में उनका ही ज्यादा होगा जिन्होंने नाम की इच्छाओं का त्याग कर दिया है, यही राज है। शान से रह के तो यहां करेंगे क्या, सादगी भरा जीवन है अपना। योगी तो शान से थोड़ा ही जिएंगे, योगी माना सच्चे सन्यासी, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बाबा ने यही तो किया था। तो हमें देख लेना है, हमारे मन को हमारी बुद्धि को भटकाने वाली चीजें हैं क्या क्या, क्योंकि मन को हम भटकाते रहेंगे और एकाग्रचित होना चाहेंगे तो नहीं होगा। और ये देखने में आता है कि मनुष्य ने व्यर्थ का बीज स्वयं बोया है, उसका वृक्ष बना लेता है वो। मनुष्य ने समस्याएं खुद पैदा की हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं प्रैक्टिकल, अभी का एक व्यक्ति पुलिस में अच्छा ऑफिसर, लेकिन उसके परिवार में एक समस्या कि उसके लड़के की जो शादी हुई तो बहू आ गई आजकल की दुनिया के शब्दों में अति हाई फाई। माताएं खुश होंगी मेरी बात सुन के, और जो ऐसा करें उनको नहीं करना है। अभी वो उसका लड़का अमेरिका में रहता है, रहता था, अभी घर आ गया। वो उसको अमेरिका देना जाना देना नहीं चाहती, जाने ही नहीं देगी, बांध दिया है। और वो भी चले उसके साथ, मैं भी नहीं जाऊंगी, तुम्हें यहीं रहना है। जो ये माँ बाप हैं उनके यानी सास ससुर, एक लड़की है उसको देखने नहीं देते, लड़के से बात करने नहीं देती। ये नारी में गिरावट आ गई है बहुत। और मैं ही बोल सकता हूं, बाकी तो कोई बोलेगा नहीं। हमारी माताएं, बड़ी माताएं कहीं कहीं छोटी कन्याओं को मिसगाइड अवश्य करती हैं। करती हैं या नहीं बताओ? लड़की की शादी हो गई, फोन दोनों के हाथ में है, मां रोज समाचार लेती है, सास क्या कहती है मुझे बताओ, मैं ठीक करती हूं उसको। ये नहीं सिखाती कि तुम्हें वहीं रहना है, वही तुम्हारा घर है, वहीं तुम्हारा जीवन है। ऐसे मिलके रहना, सहनशील बन के रहना, बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। सास एक बोले ना, दो सुना ना, दबना नहीं, मैं बैठी हूं। मैं फिर माताओं से पूछता हूं, हो रहा है या नहीं? दबी जबान से बोल रही माताएं क्योंकि जो माताएं इसको भुगत रही हैं वो अच्छी तरह परेशान होती है, अच्छी तरह से, कि हमारा बना बनाया घर इसकी मां बिगाड़ रही है, चैन नहीं लेने दे रही है। तंत्र मंत्र बहुत कराने लगी है माताएं, होशियार हो गई हैं। नौ तंत्र मंत्र के लिए आप सबको बता देता हूं, कलयुग में ये तामसिक विद्या है, हालांकि ये वेदों में ही है, चौथा वेद अथर्ववेद। इसलिए वेद व्यास से पहले लोग उसको वेदों से नहीं जोड़ते थे कि वेदों की नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं इसको जोड़ो, वेदों से इसको जोड़ दिया, अथर्ववेद में है ये सब। और ये सब विद्या कल्याणकारी थी, लेकिन कलयुग में सब कुछ तामसिक हो गया है। भक्ति सास सब तमो प्रधानता में आ गए हैं। तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, जो तंत्र मंत्र से दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे वो कष्ट 10 गुना होकर कुछ ही दिनों में उनके पास आ जाता है। मैंने बहुतों की दुर्गति होते देखा है। एक बड़ा तांत्रिक हमारे बिल्कुल नजदीक बड़े सिटी में, पावरफुल तांत्रिक था, किसी भी मारक विद्या का प्रयोग कराया। लोग आते थे ना, ये मेरा भाई, मुझे इसका भी हिस्सा लेना है, इसको मारना है। मारक विद्या का प्रयोग किया, उसको मार दिया, सारा हिस्सा इसके पास आ गया। 2 साल पहले 2 जवान लड़के उसके, 26 साल का, 28 साल का, अभी शादी हुई थी 2-4 मास पहले दोनों की 1 हफ्ते में मृत्यु हुई, अकेला रह गया। कोई उनकी पहचान वाला मेरे से मिलाया उसको। मैंने कहा भाई तंत्र विद्या ऐसी है, अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो ये उसको नष्ट करेगी। सब सुन ले ध्यान से, ये कल्याणकारी हैं, सब दूसरों को सुख देने के लिए हैं। और मैं सभी को एक बात और बता दूं, बात कड़वी है, कोई बताता नहीं है, पर मुझे बताना है माताओं को भी और भाइयों को भी। दूसरों के हिस्से का धन किसी को सुखी नहीं बनाएगा। मैंने कईयों को देखा, ऐसे माँ बाप को जिन्होंने दूसरों के हिस्सों के धन से अपने बच्चों की पालना की, उन माँ बाप को उनके बच्चों ने शादी होते ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहू ऐसी आई, इस घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, निकलो। देखो मेरी बातें कड़वी जरूर हैं पर सत्य हैं। हमारे पास एक भाई रहता, उसके एक रिलेशन में हुआ, लड़के की शादी हुई, लड़की अति तेज तराक, देख लिया 1 साल में सब कुछ, पति के पास, सास ससुर के पास 10 करोड़ की संपत्ति, धीरे धीरे प्यार से बात करते करते हंसते बहलाते कहा, आपका तो सब कुछ हमारा ही है ना, नाम कर दो। उन्होंने बेचारों ने प्यार में, बहू बहुत अच्छी है, लड़के का ही तो सब कुछ है, सब कुछ नाम कर दिया उनके। एक साल के बाद ही गई दुकान पे, दुकान बड़ी थी, बोली अब यहां क्यों बैठे हो। अब वो रूप बदल गया, निकलो ये तो हमारी है, इंसल्ट करके निकाल दिया। लेकिन ये थोड़े समझदार थे, एक फ्लैट और कुछ पैसा इन्होंने रख लिया था। कहा ठीक है हम जाते हैं। अब सोच लो आप, समाज में उनकी क्या इज्जत रही होगी, और क्या वो पैसा 10 करोड़ उनको सुख देगा। जैसे उन्होंने जबरदस्ती लिया है, वो ऐसे ही किसी का हॉस्पिटलों में जाएगा, किसी का कोर्ट कचहरी में जाएगा, किसी के बच्चे उन्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए सभी मात्र शक्ति को मैं कह रहा हूं, जो व्यवहार हम दूसरों से करते हैं वही व्यवहार हमें भी प्राप्त होता है। सब सिखा दो अपनी संतानों को, अच्छे संस्कार दो अपनी लड़कियों को, क्योंकि ये जो हमारी पढ़ाई है ना आजकल, ये अच्छे संस्कार नहीं दे रही है, ईगो बढ़ रहा है अहम, इसलिए परिवार टूट रहे हैं। करोड़ों केस तलाक के भारत के कोर्ट्स में हैं, अशांति बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है। इसलिए सभी खुद बचेंगे और दूसरों को बचाएंगे। कई माताओं के चेहरे लटके हुए नजर आ रहे हैं मुझे, नहीं अब तक कुछ भी हुआ उससे बाहर निकल जाओ। माताओं को होता है ना, किसी के साथ हुआ है, किसी ने खुद किया है, दोनों से बचेंगे। अब कोई भुगत रही है, उसकी लड़की को कष्ट हो रहा है ससुराल में, तो कोई किसी ने खुद कर दिया है, कष्ट दे दिया। इसलिए अब और सुख संपाप ना हो। देखो मैं सोचता हूं, मैं ये थोड़ा थोड़ा बताया करूं, लोग सुनते हैं और जगह भी, जो संभलने वाले वो संभलते अवश्य हैं, 100 सुनेंगे 10 भी संभलेंगे तो समाज में एक अच्छी परंपरा प्रारंभ होगी। इसलिए बिगड़े हुए समाज को अच्छा बनाना, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना, ये आप सबका परम कर्तव्य है। मैं तो ये कहता हूं, आप में से जो बहुत समझदार और बुद्धिमान है वो अपनी मेंटलिटी ऐसी बनाए हमें सहन करना पड़े। हमारा सब कुछ भी चला जाए ना, हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, हम परिवारों को तोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। अरे हमारा क्या सब कुछ जाएगा, जिनका भगवान हो गया हो उनका सब कुछ जाएगा क्या? सब कुछ तो उनका जाएगा जो भगवान से दूर हैं। इसलिए बहुत बुद्धिमान और समझदारी के साथ सभी भाई बहनें अब कलयुग के इस प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखेंगे, पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पाप मनुष्य को खाता जा रहा है। मैं तो देख रहा हूं, मेरे पास तो लोग आते हैं ना, दिल दहलाने वाली स्थितियां होती हैं कईयों की। मैं भी सोचता हूं मैं सुनूं नहीं ये सब बातें, पर न सुने तो वो हल्के नहीं होते, भारी, अति भारी। कई माताएं तो जब तक सारा न सुना लें, मेरी नहीं सुनती, मैं बीच में कुछ सुना देता हूं कि ये अभ्यास करना, फिर पूछता हूं क्या बताया मैंने, वो तो पता ही नहीं क्या बताया। पूरा खाली हो जाए तब कुछ भरेगा, तो इतना भरो ही क्यों जो जिसको खाली करने में इतना समय लगे। इसलिए बाबा ने सुंदर जीवन दिया है, अति सुंदर ज्ञान, इसी की तो तलाश थी युगों से, इसी समय की तो हम सब इंतजार कर रहे थे। काश वो दिन आए, भगवान धरा पर हो और हम उनके साथ हों। आ गए ना वो दिन, इसलिए मस्त हो जाएं सभी, आंख बंद कर लें कुछ चीजों से। हमें दादी जानकी ने शुरू में ही हमें सिखा दिया था, संसार में सुखी जीना है, सुख से जीना है, आंख और कान बंद करके चलो। मुझे बड़ी पसंद आई ये बात, समझ गए ना इसका अर्थ। ये नहीं आप सड़क पे भी आंख बंद करके चल दो, लोग कहेंगे क्या सिखा दिया। तो सभी बहुत समझदार बाबा के पास आए हैं। अब पुरुषार्थ की कोई सिंपल प्लानिंग बना के जाना, यहाँ सिंपल प्लानिंग जो सदा कर सके, ऐसी प्लानिंग नहीं करना जो 3 दिन ही चले, समझ गए ना। अति उमंग में कभी कभी हम ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं कि जो ज्यादा हफ्ता चलती है। एक सिंपल प्लानिंग, एक 3 पॉइंट प्लानिंग, 3 बातों की प्लानिंग जो हम रोज कर सके, लंबा समय कर सके, तो लास्ट आने वाले भी फास्ट चले जाएंगे। ओम शांति।
अभी 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर।
भाई जी, एक मिनट, क्वेश्चन आंसर कुछ आए हैं तो
बस 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। जिनको भी प्रश्न पूछना है तो ये माइक यहाँ रहेगा।
नहीं, 5 क्वेश्चन बस,
5 क्वेश्चन,
पहले 5 आ जाएं वो। 5 कर दिए मैं तो 10।
अच्छा, जो सेवाधारी माताएं जो रोटी डिपार्टमेंट में सेवारत है और लेकिन छोड़ करके आए हैं, वो कौन है? वो रोटी डिपार्टमेंट वाले फोन कर रहे हैं भाई।
गई वो माताएं, गई बहुत सारी।
अच्छा ठीक, जो भी सेवाधारी भाई बहने यहाँ बैठे हैं तो प्लीज अपनी अपनी सेवाओं में जाएं।
फास्ट गति से जिसको आना आ गया के बैठ जाओ, जिसको क्वेश्चन करना आ गया जाओ, भाइयों में हो यहाँ जाओ।
ओम शांति। मुझे पूछना था कि हम डिसीजन मेकिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका और सभी के लिए। एक सुंदर 2 बातों का आंसर है। कन्फ्यूजन जो मनुष्य के मन में रहता है उसका कारण तो व्यर्थ ही है। जितना उससे बचेंगे और शुभ भावनाओं से अपने चित्त को भरेंगे, ये पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल में रोज जब भी आप उठें, 7 बार याद करना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और मेरी डिसीजन मेकिंग पावर परफेक्ट है, विद गुड फीलिंग करेंगे ताकि अंदर चला जाए। तो जो हमारी सोई हुई शक्तियां हैं इससे वो जग जाती हैं और ये निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी। कम से कम 21 दिन रोज सवेरे कर लेना, उठते ही करना होता है ये प्रयोग। पहले 3 मिनट के होते हैं, उठते ही पहले 3 मिनट में। ओके ठीक है, बोलो।
ओम शांति भाई जी, एक क्वेश्चन आया है कि एक भाई जी ने पूछा है कि हमें बाबा के साथ का अनुभव तो होता है, लेकिन बाबा से हम जो बात करते हैं वो हमारे मन की मनमत के आधार पे आवाज है या बाबा के बोल है वो?
ठीक है, ये प्रश्न बहुतों के आते ही हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो इस के बाबा का उत्तर है या मेरा है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत लंबे समय का अभ्यास, बिल्कुल क्लियर आपकी लाइन हो जाए तब बाबा के उत्तर रियल में आपको टच होंगे। तब तक मुरलियों से आप उत्तर लिया करें और बाबा के सामने जो बात आपको रखनी सवेरे रूढ़िहान में रख दें, मुरलियों से उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। मुंह इधर करेंगे टीवी भी आपका स्वागत करेगी। हाँ, टीवी में आ रहा है ना ये सब।
ओम शांति भाई जी, एक परखने की शक्ति है, परखने की शक्ति में कैसे परखें और उसको बढ़ाएं कैसे, वो उस चीज में जरा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या परखना है किसी को देख के और सिचुएशन में क्या परखना है।
ये परखने की शक्ति विशेष रूप से मनुष्यों से ही रिलेटेड होती है। आपके सामने कई लोग आकर मीठी मीठी बातें करेंगे, अंदर से जहर होगा उनके अंदर। कई लोग समझ नहीं पाते, दिखा देंगे बनावटी चेन और कहेंगे सोने की है, पर हम सस्ता देते हैं आपको। सस्ते के चक्कर में माताजी जल्दी खरीद लेगी, पति को भी नहीं बताएगी, पता चलेगा ये तो झूठी है। परखना, व्यक्ति आजकल संसार में तो डबल कैरेक्टर सभी के हो ही गए हैं, बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है। कई लोग मीठे हैं फिर अंदर से धोखा देते हैं, कई लोग सत्यवादी हैं कहेंगे हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और वो बेचारे हैं तो सत्य लेकिन वो बदनाम रहते हैं। इसलिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाएंगे बहुत अच्छा अपने अंदर, शुभ भावनाएं बढ़ाएंगे और जितना जितना योग होता जाएगा इन दोनों की मदद से ऑटोमेटिकली कोई भी आपके सामने आएगा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। परखने के लिए सोचने की बात नहीं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा वो।
ओम शांति। जैसे कई आत्माएं आती हैं तो वो बहुत ज्यादा व्यर्थ सुना के जाती हैं अपना सब कुछ, तो वो हमारे अंदर कंज्यूम हो जाता है, भर जाता है, तो ऐसी क्या युक्ति है जिसे उसे स्टॉप किया जाए?
हाँ देखो, मेरे सामने तो ये समस्या सबसे ज्यादा है, बैठो। मुझे सारा दिन सुनना पड़ता है लोगों का, मुझे लोग मना भी करते हैं कि इससे तुम्हारे दिमाग पर असर आएगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं आएगा, मैंने कुछ बातें पक्की की हुई हैं, ये इनका अपना हिसाब किताब है, इसके जिम्मेदार ये स्वयं है। मैं तो एक डॉक्टर की तरह हूं ना, मुझे तो दवाई देनी, उनको दवाई दिया और भूल गए, हाय इस बेचारी के साथ ऐसा क्या हुआ, इसको इसके पति ने कितना तंग किया, कितना बुरा जमाना आ गया, ये सब नहीं। हम जानते हैं जमाना बहुत बुरा है, हम जानते हैं सभी के कर्मों का हिसाब किताब भी अब सेटल हो रहा है, इसलिए बहुत हल्के रहेंगे और अपने स्वमान में जितना अच्छा रहेंगे, अपने चारों ओर आभा मंडल ओरा क्रिएट किया करें एक बार, तो दूसरों की बैड एनर्जी भी हमारे अंदर नहीं आएगी, और दूसरों की बातें जब हम सुन रहे हैं तो उसमें फुल इंटरेस्ट न ले लें, समझ गए ना? जब हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो हमारे अंदर जा रहा है। इंटरेस्ट तो बाबा में लेना, उसके महावाक्यों में लेना है, बाकी को लाइटली सुनना है तो असर नहीं होगा।
भाई जी, जब भी किसी के सामने हम आते हैं दूसरी आत्माओं के, तो जो भी हमारा वो आत्मा वाला स्थिति होती है तुरंत भूल जाते हैं। चार लोगों के सामने बैठे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो तुरंत ही देह भान में ही हमेशा बात रहता हूं मैं, और
उसके वाइब्रेशंस का इफेक्ट तुरंत आ जाता है। ये दैहिक चीज है, थोड़ी थोड़ी जब बातें नहीं है तब प्रैक्टिस कर लो आत्मा देखने की, और उससे पहले ही अपने स्वमान में अच्छे स्थित रहो, और जरा पहले से ही डिटरमाइन थॉट भी कर लिया करो कि अब ये लोग आ रहे हैं, मुझे यही करना है, ये नहीं करना है, तो 10 बार कम से कम ये प्रैक्टिस करेंगे फिर बढ़ती जाएगी, और दूसरों का इफेक्ट नहीं, आपके गुड वाइब्रेशंस का इफेक्ट उन पे जाएगा, क्योंकि आत्मा देखने से बहुत बड़ा फायदा है कि हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को जाने लगते हैं। आ जाओ, हो तो गए ना, कितने हो गए? आ रहे वो तो बहुत आएंगे।
ओम शांति भाई जी। हमारा एक प्रश्न है, हमारे अंदर शुभ भावना शुभकामना बाबा ने बहुत भरी है, विच इज वेरी गुड एंड आई एम वेरी थैंकफुल, बट एक चीज है जैसे हम देखते हैं कि कोई नेगेटिव व्यवहार करता है तो वो नेगेटिविटी का असर हम पर बहुत ज्यादा पड़ जाता है और उससे हम बाहर नहीं निकल पाते, शायद स्वीकृति की शक्ति कम है, तो उसको कैसे बढ़ाएं या क्या?
नहीं, ठीक है, आपको बधाई शुभ भावनाओं के लिए, लेकिन इसमें ये है कि आत्मा अगर सेंसिटिव ज्यादा है तो दूसरों की हर चीज को रिसीव करने लगते, बी पावरफुल, और उसके लिए मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, मैं पावरफुल हूं, नथिंग कैन अफेक्ट मी, ये संकल्प जरा बढ़ाते थे।
ओम शांति भाई जी, एवरीवन ओम शांति। यो क्वेश्चन मेरा पर्सनल है कि मैं सुबह एक तो नियम से नहीं उठ पाती और मैं सबके सामने स्वीकार करना चाहती हूँ, और योग मेरा पूरा,
बस आपने स्वीकार कर लिया, कल से उठेंगे, यू आर ग्रेट भाई। पर्सनल बात कोई भी हजारों की सभा में बोलना ये बहादुरी है ना इनके।
कोई विकार होता है जब तक हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते ना, हाँ। तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होती
है। नहीं, ठीक,
आज मैं एक्सेप्ट करने के लिए उठी हूँ कि आपके पास नहीं उठ पाती।
आपके पास क्लीन हार्ट है और ऐसे हार्ट पे भगवान राजी रहता है, ये जो प्रैक्टिस यहाँ
सब दुआ करें कि मैं टाइम,
बिल्कुल भाई, ये रोज 4 बजे उठे, सब एक एक संकल्प दे दो, देखो सब काम हो गया।
ओम शांति, ओम शांति।
चलो ओम शांति।